आस्था ने बिना देरी किए जल्दी ही पेन उठा लिया और बिना पढ़े उसमें क्या लिखा है क्या नहीं उसने फटाफट से सिग्नेचर्स कर दिए। आस्था इस वक्त अरमान से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी और फटाफट से उसकी आंखों के सामने से हट जाना चाहती थी, इसीलिए उसने जल्दी से कागजों पर भी साइन कर दिए थे। आस्था की साइन करते ही अरमान ने एक झटके से वो सारे पेपर्स उठा लिए। फिर वो आस्था की ओर तिरछी मुस्कुराहट से देख रहा था और अचानक से पेपर्स बेड पर फेंक कर वो आस्था की ओर कदम बढ़ाने लगा। आस्था डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगी क्योंकि उस वक्त उसे अरमान से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। जब आस्था दीवार से टकरा गई वो सोचने लगी, हे कान्हा जी, अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? इस मॉन्स्टर से कैसे बचें? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरमान ने आस्था का रास्ता रोकने के लिए साइड की दीवार पर अपना एक हाथ रख दिया। आस्था दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करने लगी लेकिन उसने वहां पर भी अपना हाथ रख दिया। आस्था मन ही मन सोचने लगी, इस मॉन्स्टर की प्रॉब्लम क्या है? अब क्यों इस तरह से हमारा रास्ता रोक रहा है? पता नहीं अब इस मॉन्स्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अरमान ने दोनों तरफ से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। कुछ देर आस्था के खूबसूरत चेहरे को गौर से देखने के बाद अरमान बोला, तुम जानती हो तुमने किन पेपर्स पर साइन किए हैं? क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? क्यों तुमने एक बार भी पेपर्स पढ़ना जरूरी नहीं समझा? आस्था हैरानी से अरमान की ओर देखने लगी। तब अरमान ने कहा, चलो तुमने नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। लास्ट के दो कॉलम्स में ये सब बात साफ साफ मेंशन है कि अगर तुमने कभी मुझे धोखा देने की या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मर्डर करने का भी हक रखता हूँ। साथ ही साथ तुम मेरी कैद में रहोगी। मेरी मर्जी के बिना तुम चाहकर भी खुद को यहाँ से आज़ाद नहीं कर पाओगी। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ, समझे तुम? ऐसा कहकर अरमान आस्था की आंखों ही आंखों में मजाक उड़ाने लगा था। अचानक आस्था धीमे धीमे कुछ बोल रही थी लेकिन अरमान उसके इतना करीब होते हुए भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। अरमान ने अपने कान थोड़ा सा आस्था के करीब उसके होठों के पास ले गया। वो सुनना चाहता था कि आखिरकार ये लड़की इतनी धीमी आवाज में क्या बड़बड़ा रही है। वहीं आस्था ने जो डर के मारे अपनी आंखें बंद की हुई थी उसे एहसास ही नहीं रहा कि इस वक्त अरमान उसके कितने करीब है। वो केवल धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। अब अरमान जैसे ही उसके थोड़ा करीब गया तो उसे साफ सुनाई देने लगा कि आस्था क्या बड़बड़ा रही है। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें बहुत तेज नींद आ रही है, हमें सोने दो, हम थक चुके हैं, प्लीज हमें सोने दो। अब आस्था की बात सुनकर अरमान हैरान हो गया क्योंकि उसने तो सोचा था कि जब वो आस्था को ये सारी बातें बताएगा कि अरमान के पास उसकी जान तक लेने का हक है, साथ ही उसे जिंदगी भर अपने पास कैद करने का हक है, तो वो उसके सामने रोएगी, चिल्लाएगी, कहेगी कि आपने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो। लेकिन आस्था तो धीमी आवाज में कुछ और ही बड़बड़ा रही थी। अरमान ने आस्था की ये सारी बातें सुन ली, उसके माथे पर बल पड़ गए। वो गुस्से से आस्था को घूरने लगा लेकिन इससे पहले कि वो आस्था के पास से थोड़ा पीछे हटता, आस्था ने अपनी आंखें खोली और अरमान को अपने इतने करीब देखकर उसने जल्दी से जोर से चीख मार दी। वो चीख अरमान के कानों में पड़ी जिससे अरमान के कानों के अंदर तक झुनझुनाहट सी हो गई। अरमान ने जल्दी से एक हाथ अपने कानों पर रखा, दूसरा हाथ आस्था के मुंह पर रखा और अपने कानों को बुरी तरह से मसलते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? इतनी जोरों से कौन चीखता है? इतने गुस्से वाली आवाज सुनकर आस्था एक बार फिर डर गई और उसने जोरों से रोना शुरू कर दिया। आस्था को इस तरह से रोता हुआ देखकर अरमान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे। ऊपर से इस लड़की ने इतना तेज चिल्लाकर उसका कान फोड़ने की कोशिश की और अब ये खुद ही रोकर दिखा रही है, मानो कि कितनी ज्यादा मासूम हो। ये सोचते हुए अरमान एक नजर रोती हुई आस्था को देखकर जल्दी ही उस कमरे से बाहर निकल गया। अरमान के जाने के बाद आस्था ने राहत की सांस ली और वो बैठ के एक सिरे पर बैठी बैठी रोने लगी और खुद से कहने लगी, नानी माँ, आप तो कहती थीं कि हम सबके साथ भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला ही होगा। हमने तो कभी किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार ही नहीं किया, फिर पता नहीं इन कुछ दिनों में देखिए ये अचानक से हमारी जिंदगी के साथ क्या से क्या हो गया। ऐसा कहकर आस्था सुबक कर रो पड़ी। वहीं दूसरी ओर आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान दादाजी को लेकर घर आ गए और जैसे ही वे घर आए उन्हें अजीब सी खामोशी पूरे सिंघानिया मेंशन में महसूस हुई। लेकिन उन चारों ने किसी से कुछ नहीं कहा। वहीं आकाश और सुमित को यही लग रहा था कि शायद अरमान ने आस्था को अपनी बीवी मान लिया है, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर आया था ताकि दोनों साथ में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। तो यही सब सोचकर वे दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक उन्हें सीढ़ियों पर से आता हुआ अरमान नजर आया। अरमान दादाजी को देखकर तुरंत उनके पास गया और बोला, दादाजी अब आपकी तबीयत कैसी है? दादाजी ने अपना हाथ अरमान के सर पर रखते हुए कहा, मेरे बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी तूने मेरी सारी परेशानियाँ खत्म कर दी और आस्था बेटी को अपनाकर तूने मुझे जो खुशी दी है उसके बदले तो मैं अब और कितने ही साल जिंदा रह सकता हूँ। तूने फिर से मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी है। ऐसा कहकर दादाजी हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। फिर अरमान बोला, आप अभी हॉस्पिटल से आए हुए हैं, अब आप ज्यादा किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे, समझे आप? अब चलिए चलकर अपने कमरे में आराम कीजिए। दादाजी ने कहा, अरे हाँ हाँ बेटा, आराम तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरी बहू कहाँ है? मुझे आस्था बेटी से मिलना है, उसके बाद ही मैं आराम करने जाऊंगा। अब जैसे ही दादाजी ने थोड़ी सी जिद की, अरमान थोड़ा सा गुस्सा तो हो गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वो दादाजी को आस्था को देखने से मना करे तो कैसे करे। आते साथ ही दादाजी को मायूस करना क्या ठीक होगा, वो सोच में पड़ गया। वहीं आहाम भी बोला, हाँ हाँ भैया, भाभी कहाँ है? जब से हम सब घर में आए हैं उन्हें देखा ही नहीं। वो आस्था के बारे में अरमान से पूछताछ करने लगा। जैसे ही आहान ने अपने इमोशंस अरमान के सामने शेयर किए, अरमान चिड़चिड़ा हो गया और गुस्से से उसे घूरने लगा।